एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो साइज में तो छोटी है पर है बड़ी दमदार, सोचने पर मजबूर कर देती है ना।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अली रतन सी की किताब रेसिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन की।
अब देखिए, विषय थोड़ा शायद भारी लगे, नस्लवाद, लेकिन आज की दुनिया में मुझे लगता है इसे समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
बिल्कुल सही कहा। अक्सर हमें लगता है कि ये शायद पश्चिम की समस्या है या कहीं दूर की बात है, लेकिन रतन सी साहब की किताब ये दिखाती है कि नस्लवाद के पीछे जो सोच है, जो तरीके हैं, वो कितने फैले हुए हैं और कैसे वो अपना रूप बदलते रहते हैं।
हाँ, ये सिर्फ दूर देशों की कहानी नहीं है, इसके जो सिद्धांत है वो हमें कहीं भी किसी भी समाज में नजर आ सकते हैं, शायद थोड़े अलग रूप में। सही, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब के जरिए नस्लवाद की इस जटिल सी गुत्थी को थोड़ा थोड़ा सुलझाएं, इसके अलग अलग पहलुओं को समझें बिना किसी लाग लपेट के।
हाँ जरूर, चलिए पहले लेखक से ही शुरू करते हैं। ये अली रतन सी हैं कौन और क्या खासियत है उनके नजरिए में, उनके दृष्टिकोण में?
देखिए, अली रतन सी काफी जाने माने समाजशास्त्री हैं। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में समाजशास्त्र के एमेरिटस प्रोफेसर हैं। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं चीजों को समझने समझाने में लगाया है, नस्ल, जातीयता, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सब।
हाँ, और जो खास बात है ना उनकी, वो ये है कि वो चीजों को बहुत बड़े कैनवस पर देखते हैं, एक वैश्विक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जिसे कहते हैं। वो सिर्फ एक देश या एक टाइम पीरियड तक सीमित नहीं रहते।
अच्छा,
जैसे जैसे वो यूरोप के ज्ञानोदय काल को अमेरिका की गुलामी से जोड़ते हैं, फिर उसे एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशवाद से जोड़ते हैं, और फिर आज के समकालीन मुद्दे जैसे इस्लामोफोबिया, इन सबको एक धागे में पिरो के दिखाते हैं।
ये तो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर इन चीजों को अलग अलग खानों में डालकर देखते हैं।
बिल्कुल, रतन सी हमें दिखाते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और एक और अहम बात, वो सिर्फ लोगों की व्यक्तिगत सोच या नफरत तक ही नहीं रुकते।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक समाजशास्त्री होने के नाते वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि नस्लवाद सिर्फ किसी एक इंसान की बुरी सोच का नतीजा नहीं है। ये हमारे समाज के ढांचे में, हमारे कानूनों में, हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं में, यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की भाषा और सोच में कैसे बसा हुआ है।
मतलब एक सिस्टम की तरह काम करता है।
हाँ बिल्कुल, ये एक सिस्टम है, सिर्फ कुछ बुरे लोगों का मसला नहीं। और कमाल की बात यह है कि इतने गहरे और पेचीदा विचारों को भी वो बहुत साफ और सरल भाषा में समझा देते हैं।
हाँ, मैंने भी पढ़ते हुए महसूस किया, कोई भी आम पाठक जो इस विषय का एक्सपर्ट न भी हो, वो भी उनकी बात आसानी से समझ सकता है। वो इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं।
तो चलिए अब सीधा किताब पर आते हैं।
हाँ।
इसका मूल विचार क्या है, सबसे बड़ा आइडिया जो रतन सी पेश करते हैं?
मेरे ख्याल से जो सबसे चौंकाने वाली या कहें जो नींव हिला देने वाली बात ये किताब कहती है, वो ये है कि नस्लवाद कोई हजारों साल पुरानी चीज नहीं है। ये कोई इंसान की फितरत या नेचर का हिस्सा नहीं है, ये एक आधुनिक आविष्कार है।
अच्छा, ये सुनना ही अपने आप में काफी अलग है। मतलब हम तो अक्सर यही सोचते हैं ना, ये भेदभाव, ये ऊंच नीच, ये तो शायद हमेशा से ही चला आ रहा होगा।
हाँ, रतन सी इसी आम धारणा को चुनौती देते हैं। वो तर्क देते हैं कि ये एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी जो पिछले कुछ सौ सालों में खास ऐतिहासिक परिस्थितियों में पनपी, जैसे यूरोप का ज्ञानोदय काल, अटलांटिक दास व्यापार और फिर उपनिवेशवाद का दौर। इसे बकायदा बनाया गया था खास मकसदों के लिए।
तो ये सिर्फ पूर्वाग्रह या नफरत से कहीं कहीं ज्यादा गहरी चीज है?
हाँ, बहुत ज्यादा। किताब का जो केंद्रीय सवाल है वो यही है कि ये नस्ल का विचार, मतलब ये आइडिया कि इंसानों को उनकी चमड़ी के रंग या शारीरिक बनावट के आधार पर अलग अलग जैविक या सांस्कृतिक ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, ये आखिर आया कहाँ से और क्यों आया?
और किताब का जवाब क्या है इस पर?
जवाब यह है कि नस्ल की ये पूरी अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट असल में गढ़ा गया था ताकि आर्थिक शोषण को जैसे गुलामी को, या राजनीतिक दबदबे को जैसे उपनिवेशवाद को, और जो सामाजिक असमानता थी उसे सही ठहराया जा सके,
जस्टिफाई किया जा सके।
मतलब ये कि पहले शोषण शुरू हुआ और फिर उसे जायज ठहराने के लिए नस्ल का ये सिद्धांत, ये थ्योरी गढ़ी गई।
हाँ, काफी हद तक यही बात रंतांसी कहते हैं, और वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हमें आज नस्लवाद से असरदार तरीके से लड़ना है तो हमें इसकी जड़ों को समझना होगा, इसके पीछे के तर्कों को समझना होगा, और सबसे जरूरी इसकी जो रूप बदलने की क्षमता है उसको समझना होगा। रूप बदलने की क्षमता है
मतलब ये कि ये कोई स्थिर चीज नहीं है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कभी ये विज्ञान का चोला पहन लेता है तो कभी संस्कृति का। हमें इसे पहचानना सीखना होगा।
ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच का मामला नहीं, बल्कि ये सत्ता और विचारधारा का खेल है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किताब कैसे इन विचारों को परत परत खोलती है, शुरुआत कहाँ से होती है?
किताब की शुरुआत ही इस पहेली से होती है कि भाई नस्लवाद आधुनिक क्यों है। रंसीन समझाते हैं कि देखिए, पुराने जमाने में जैसे प्राचीन ग्रीस या रोम में भेदभाव था, बिल्कुल था, दास्ता भी थी, बर्बर लोगों का कॉन्सेप्ट भी था, लेकिन वो आज के नस्ल पर आधारित भेदभाव जैसा नहीं था।
कैसा नहीं था?
जहाँ रंग या शारीरिक लक्षणों को स्थायी, बायोलॉजिकल और मतलब पूरी तरह से तय मान लिया जाए, ऐसा नहीं था। तो सवाल उठता है, फिर ये आधुनिक नस्ल का विचार, ये आइडिया जन्मा कैसे, कहाँ से आया ये?
और इसका जन्म होता है एक ऐसे दौर में जिसके बारे में हम अक्सर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ज्ञानोदय काल यानी एनलाइटनमेंट। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ ज्ञान की बातें, दूसरी तरफ नस्लवाद।
बिल्कुल, और यही इस किताब का एक सबसे दिलचस्प और शायद परेशान करने वाला बिंदु है। 17वीं-18वीं सदी में जब यूरोप में स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार जैसे क्रांतिकारी विचार आ रहे थे, ठीक उसी वक्त अटलांटिक के पार लाखों अफ्रीकियों को जानवरों की तरह जहाजों में भरकर गुलाम बनाया जा रहा था और दुनिया भर में उपनिवेश बसाए जा रहे थे।
तो एक तरफ इतने ऊंचे आदर्श और दूसरी तरफ इतना भयंकर शोषण, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल पाईं? ये विरोधाभास कैसे बना रहा?
रतनसी यही दिखाते हैं कि कैसे उस दौर के बड़े बड़े विचारक भी, जिन्होंने स्वतंत्रता और तर्क की बातें की, जैसे कांट, लॉक, ह्यूम, उन्होंने भी अनजाने में या शायद जानबूझकर इंसानों को नस्लों में बांटने और उनमें एक ऊंच नीच का क्रम, एक हिरार्की बनाने में भूमिका निभाई।
अच्छा,
जैसे कांट ने माना कि श्वेत नस्ल जो है वो तर्क और बुद्धि में सबसे ऊपर है। अब सोचिए, ये विचार कहाँ से आ रहे थे?
तो क्या ये विचार इसलिए जरूरी थे ताकि गुलामी और उपनिवेशवाद को एक तरह से नैतिक जामा पहनाया जा सके?
हाँ, अनिवार्य रूप से। अब सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर जो क्रूरता हो रही थी, जो आर्थिक लूट हो रही थी, उसे सही ठहराने के लिए ये जरूरी था कि ये साबित किया जाए कि जिन लोगों का शोषण हो रहा है वो किसी न किसी तरह कमतर हैं, हीन हैं, शायद पूरी तरह इंसान भी नहीं है। हाँ, और यहीं पर नस्ल का ये विचार एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक और आर्थिक हथियार बनकर उभरा। इसे गढ़ा गया अन्याय को न्याय संगत दिखाने के लिए।
ये तो हुई शुरुआत, लेकिन फिर इस विचार ने और क्या क्या रूप लिए? मैंने सुना है वैज्ञानिक नस्लवाद का भी एक दौर आया था, वो क्या था?
हाँ, वो आया 19वीं सदी में। तब तो बकायदा कोशिश हुई कि नस्लवाद को विज्ञान का ठप्पा लगा दिया जाए, उसे एक वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह पेश किया जाए। ये वो दौर था जब क्रेनियोमेट्री मतलब खोपड़ी का आकार नापना,
हाँ, सुना है इसके बारे में,
फ्रेनोलॉजी यानी खोपड़ी की बनावट से चरित्र बताना, फिजियोनॉमी यानी चेहरे की बनावट से गुण बताना, इस तरह के छद्म विज्ञान सिडोसाइंस का बड़ा बोलबाला था।
और इनका मकसद क्या था, सिर्फ खोपड़ियां नापना?
नहीं नहीं, मकसद था वैज्ञानिक सबूत खोजना, ये साबित करना कि श्वेत नस्ल जो है वो बाकी नस्लों से श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। आर्थर डी गोबिनियो जैसे विचारकों ने तो किताबें लिख डाली जिनमें आर्यन नस्ल की महानता का गुणगान था, और ये डर दिखाया गया कि अगर नस्लों का मिश्रण हुआ तो सभ्यता खत्म हो जाएगी।
बाप रे, और डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का क्या हुआ, उसका भी कुछ इस्तेमाल हुआ इसमें?
हाँ, उसे भी नहीं बख्शा, उसे भी तोड़ मरोड़ कर सामाजिक डार्विनवाद बना दिया गया। ये कहा गया कि जैसे प्रकृति में योग्यतम ही बचता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वैसे ही समाजों में भी यूरोपियन लोगों का बाकी दुनिया पर राज करना, ये तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक रूप से सही है।
मतलब नस्लवाद को तब पूर्वाग्रह या गलत सोच नहीं माना जा रहा था?
नहीं, उसे एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक सत्य, एक ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक ट्रूथ की तरह पेश किया जा रहा था, सोचिए कितना खतरनाक था ये पश्चिमी बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन में कितनी गहराई तक समा गया था।
ये तो वाकई डरावना है कि कैसे विज्ञान का नाम लेकर उसका दुरुपयोग किया गया और इसका सीधा असर फिर उपनिवेशवाद पर पड़ा होगा, है ना?
अरे बिल्कुल सीधा। ये वैज्ञानिक नस्लवाद उपनिवेशवाद की एक परफेक्ट बहाना बन गया। वो जो सभ्य बनाने का मिशन था ना, सिविलाइजिंग मिशन,
हाँ, व्हाइट मैन्स बर्डन,
बिल्कुल, वो असल में अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के संसाधनों की लूट और राजनीतिक गुलामी का एक वैचारिक कवर ही था। ये कहा गया कि हम तो इन पिछड़े असभ्य नस्लों का भला करने आए हैं।
हाँ, और हमने इतिहास में पढ़ा भी है कि कैसे औपनिवेशिक शासकों ने स्थानीय लोगों के बारे में तरह तरह की रूढ़िवादिताएं, स्टीरियोटाइप्स बनाए, जैसे भारत में लड़ाकू जातियां और गैर लड़ाकू जातियां।
सही कहा। या अफ्रीकियों को बच्चों जैसा या आलसी बताना, ये सब असल में शासन करने के तरीके थे, लोगों को कंट्रोल करने के तरीके।
हाँ, नस्लवाद सिर्फ एक विचार नहीं था, ये तो औपनिवेशिक शासन की आप कह सकते हैं नींव का पत्थर था। उसके बिना वो ढांचा शायद खड़ा ही नहीं रह पाता।
सही। लेकिन फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और होलोकॉस्ट की भयावहता सामने आई, जिस तरह नाजियों ने यहूदियों और दूसरे समूहों का नस्ल के नाम पर संहार किया, उसने इस जैविक और वैज्ञानिक नस्लवाद की असलियत दुनिया के सामने ला दी।
सही।
उसकी पोल खुल गई।
हाँ, उसके बाद तो नस्ल के वैज्ञानिक आधार को पूरी तरह नकार दिया गया।
जी।
यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बाकायदा बयान जारी किए कि नस्ल एक सामाजिक चीज है, ये कोई बायोलॉजिकल सच्चाई नहीं है। तो क्या उसके बाद नस्लवाद खत्म हो गया?
काश ऐसा होता। यहीं पर रतन सी एक और अहम मोड़ की बात करते हैं।
अच्छा।
नस्लवाद खत्म नहीं हुआ, उसने बड़ी चालाकी से अपना चोला बदल लिया।
चोला बदल लिया मतलब?
मतलब जब विज्ञान वाला तर्क बदनाम हो गया, डिस्क्रेडिट हो गया, तो उसने संस्कृति का लबादा ओढ़ लिया। इसे रत्ती हंसी और अन्य विचारक कहते हैं नया नस्लवाद या सांस्कृतिक नस्लवाद।
सांस्कृतिक नस्लवाद, ये क्या होता है? ये कैसे अलग है पहले वाले से?
देखिए, अब जोर इस बात पर नहीं दिया जाता कि कोई नस्ल जैविक रूप से बायोलॉजिकली कमतर है, बल्कि अब ये कहा जाता है कि कुछ समूहों की संस्कृति ऐसी है जो मुख्य धारा की संस्कृति, और ज्यादातर मामलों में ये पश्चिमी संस्कृति होती है, से मेल नहीं खाती। वो पिछड़ी हुई है या हमारे मूल्यों के लिए खतरा है।
कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? आजकल ये कहाँ दिखता है?
इसका सबसे बड़ा उदाहरण आजकल हम इस्लामोफोबिया में देखते हैं, खासकर 9/11 के बाद जिस तरह से इस्लाम को एक हिंसक, अतार्किक और पश्चिमी उदार लोकतंत्र के दुश्मन धर्म के तौर पर पेश किया जाने लगा। यहाँ बात लोगों के शारीरिक लक्षणों की नहीं हो रही है।
हाँ, यहाँ तो पूरे धर्म और संस्कृति को ही निशाना बनाया जा रहा है।
बिल्कुल। या जैसे अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि कुछ अप्रवासी समूह जो है वो कभी भी मेजबान देश की संस्कृति में घुलमिल नहीं सकते, क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति बहुत अलग है, असंगत है, इनकम्पैटिबल है। ये सांस्कृतिक नस्लवाद का क्लासिक उदाहरण है।
ये तो बहुत सूक्ष्म तरीका है भेदभाव करने का, क्योंकि ये संस्कृति की आड़ में किया जा रहा है।
और इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट किताब में आता है, संस्थागत नस्लवाद का। ये क्या बला है, ये समझना बहुत जरूरी लगता है।
हाँ, ये शायद आज के दौर में समझना सबसे जरूरी है।
संस्थागत नस्लवाद या इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म का मतलब है कि नस्लीय भेदभाव और असमानता जो है वो हमारे समाज की संस्थाओं, जैसे पुलिस व्यवस्था, हमारी न्याय प्रणाली, हमारे स्कूल, कॉलेज, कंपनियां, यहाँ तक के हाउसिंग मार्केट, इनके रोजमर्रा के कामकाज के तरीके में ही शामिल हो जाती है, रच बस जाती है।
मतलब जरूरी नहीं कि वहाँ काम करने वाले लोग जानबूझकर नस्लवादी हों या वो बुरा सोचते हों।
बिल्कुल, यही इसकी सबसे खास और खतरनाक बात है। हो सकता है किसी व्यक्ति का इरादा बिल्कुल बुरा ना हो, लेकिन सिस्टम ही ऐसा बना हो, नियम ही ऐसे हों, प्रक्रियाएं ही ऐसी हों कि उनके नतीजे कुछ खास समूहों के खिलाफ जाते हों।
कोई उदाहरण समझने के लिए?
जैसे मान लीजिए, अगर पुलिस किसी एक खास समुदाय के इलाकों में ज्यादा गश्त लगाती है या वहां के लोगों को ज्यादा रोककर तलाशी लेती है, रेशियल प्रोफाइलिंग जिसे कहते हैं, तो जाहिर है वहां से गिरफ्तारियां भी ज्यादा होंगी, भले अपराध दर बाकी इलाकों जितनी ही क्यों ना हो।
हाँ, ये तो लॉजिकल है।
या सोचिए, किसी नौकरी के इंटरव्यू में अगर कल्चरल फिट को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए या किसी खास तरह के बात करने के लहजे को ज्यादा प्रोफेशनल माना जाए, तो हो सकता है कि अनजाने में ही कुछ खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के काबिल लोग भी बाहर रह जाए।
या जैसे स्कूलों की किताबों में अगर सिर्फ एक ही समूह का इतिहास और उनके नायकों का गुणगान हो और दूसरों को नजरअंदाज कर दिया जाए।
बिल्कुल, ये सब संस्थागत नस्लवाद के उदाहरण हैं। समस्या सिर्फ कुछ व्यक्तियों की बुरी सोच में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के डिजाइन में, उसकी संरचना में हो सकती है।
ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात है, ये सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है।
हाँ, और किताब का जो निष्कर्ष है वो इसी बात पर आता है कि नस्लवाद से लड़ना एक अधूरा प्रोजेक्ट है। ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है, कोई आसान बने बनाए जवाब नहीं है इसके।
तो हमें क्या करना होगा?
हमें लगातार इसके बदलते हुए रूपों को पहचानना सीखना होगा, इसके इतिहास को समझना होगा, और सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर अपनी सोच बदलने से काम नहीं चलेगा, हमें संस्थागत स्तर पर, सिस्टमिक लेवल पर बदलाव के लिए काम करना होगा।
तो इस पूरी काफी गहरी बातचीत से अगर हमें 3-4 सबसे जरूरी बातें निकालनी हो जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए, तो वो क्या होंगी?
मेरे हिसाब से पहली और सबसे बुनियादी बात तो यही है, नस्लवाद आधुनिक है, ये स्वाभाविक या हमेशा से मौजूद नहीं रहा है। इसे इंसानों ने बनाया है खास मकसदों के लिए, और अगर इसे बनाया गया था तो इसे खत्म भी किया जा सकता है। ये बात हमें कहीं ना कहीं उम्मीद देती है।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। दूसरी बात,
दूसरी, नस्लवाद गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वो जैविक तर्कों से हटकर सांस्कृतिक तर्कों पर आ गया है, वो खुलेआम नफरत से हटकर व्यवस्था में छुपे पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। हमें इसके नए नए सूक्ष्म रूपों के प्रति सजग रहना होगा। आज शायद सांस्कृतिक या संस्थागत रूप ज्यादा प्रभावी और खतरनाक हो।
बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट?
तीसरा अहम सबक ये है कि नस्लवाद सिर्फ नफरत या भावना का मामला नहीं है, ये शक्ति और औचित्य की विचारधारा है। इसका मुख्य काम है असमानता को, शोषण को, एक समूह के दूसरे पर दबदबे को तर्कसंगत बनाना, उसे जायज ठहराना। तो हमें हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि किसी खास विचार से, किसी खास नैरेटिव से किसको फायदा हो रहा है, कौन सी शक्ति संरचनाएं इससे मजबूत हो रही हैं।
ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और चौथा पॉइंट?
और चौथी बात जो संस्थागत नस्लवाद से जुड़ी है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से ज्यादा खतरनाक संस्थागत नस्लवाद हो सकता है, क्योंकि ये चुपचाप काम करता है, रोजमर्रा की सामान्य प्रक्रियाओं के जरिए असमानता पैदा करता है और उसे बनाए रखता है, भले ही इसमें शामिल व्यक्तियों का इरादा बुरा ना हो। इसलिए सिर्फ लोगों के दिलों को बदलने की बात करना काफी नहीं है, हमें सिस्टम को भी बदलना होगा।
हाँ, अगर हम इन चार बातों को ध्यान में रखें तो शायद हम अपने आसपास की दुनिया को, समाज में हो रही घटनाओं को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं, चाहे वो खबरों में किसी समुदाय के बारे में बनती धारणाएं हों।
हाँ, या दफ्तर में होने वाली भर्तियां हों, या फिर हमारे बच्चों के स्कूलों का पाठ्यक्रम हो, हम सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं कि कहीं यहाँ भी तो वो पैटर्न काम नहीं कर रहा।
बिल्कुल, किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो सीधे चोट करते हैं ना, जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे वो पहला वाला विचार।
हाँ, जैसे ये कि नस्लवाद कोई आदिम नफरत नहीं है जो हमेशा से हमारे साथ रही है, ये एक आधुनिक विचारधारा है जो ज्ञानोदय और गुलामी के युग की बौद्धिक और आर्थिक क्रांतियों से पैदा हुई है। इसे अन्याय को उचित ठहराने के लिए आविष्कार किया जाना था, ये पूरी कहानी को ही पलट देता है ना।
बिल्कुल पलट देता है। या फिर ये वाला कि जब हॉलोकॉस्ट के बाद नस्ल का वैज्ञानिक आधार ढह गया तो नस्लवाद गायब नहीं हुआ, इसने केवल अपने कपड़े बदले। जैविक हीनता की भाषा को सांस्कृतिक असंगतता की अधिक स्वीकार्य भाषा से बदल दिया। ये आज के जो कल्चर वॉर्स या सांस्कृतिक टकराव की बातें होती हैं, उनको समझने की एक चाबी देता है।
और ये वाला तो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, नस्लवाद को केवल घृणा करने वाले व्यक्तियों के दिलों में खोजना पूरी तरह से निरर्थक है। इसका सबसे शक्तिशाली रूप संस्थागत है, जो हमारे कानूनी, शैक्षिक और आर्थिक प्रणालियों की सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से चुपचाप काम करके असमानता पैदा करता है और उसे बनाए रखता है। ये हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है, व्यक्तियों से हटाकर व्यवस्था पर फोकस लाता है।
सही कहा। और आखिर में वो विरोधाभास जिस पर हमने बात की थी, नस्ल एक सार्थक जैविक श्रेणी नहीं है, लेकिन नस्लवाद एक बहुत ही वास्तविक सामाजिक घटना है जिसके दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए भौतिक परिणाम होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही नस्ल का विचार वैज्ञानिक रूप से झूठा हो, नस्लवाद का असर, उसका प्रभाव बहुत बहुत असली और विनाशकारी है।
हाँ, ये सारे विचार हमें सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया, एक नया चश्मा देते हैं। हम रोजमर्रा की चीजों को ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से देख पाते हैं।
सही कहा। जैसे अब हम खबरें सुनते या पढ़ते हुए शायद ज्यादा ध्यान देंगे कि कहीं किसी समुदाय को स्टीरियोटाइप तो नहीं किया जा रहा, कहीं सभ्यताओं का टकराव जैसी बातें करके सांस्कृतिक नस्लवाद को तो हवा नहीं दी जा रही।
हाँ, या फिर अपने काम की जगह पर हम सोच सकते हैं कि क्या हमारी नीतियाँ, हमारे प्रोसेस, हमारी प्रक्रियाएं कहीं अनजाने में ही किसी खास समूह के लिए रुकावट तो नहीं बन रही। क्या हम सिर्फ दिखावे की विविधता मतलब टोकन डाइवर्सिटी से आगे बढ़कर असली समावेश यानी रियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं?
और शायद सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी, हम अपने अंदर झांक सकते हैं। क्या हमारे अंदर भी कुछ अनजाने पूर्वाग्रह हैं, अनकॉन्शियस बायस, जो हमने अपने समाज से, अपनी परवरिश से सीख लिए हैं? ये किताब हमें अपनी सोच पर भी सवाल उठाने का हौसला देती है।
हाँ बिल्कुल, ये किताब हमें कोई तैयार जवाब या समाधान नहीं देती, बल्कि ये हमें सही सवाल पूछने के औजार देती है। ये हमें सोचने का एक फ्रेमवर्क देती है कि समस्या कितनी गहरी, कितनी जटिल और कितनी फैली हुई है।
इस पूरी चर्चा से अदम मुझे एक बात कहनी हो जो मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली या सोचने पे मजबूर करने वाली थी, तो वो शायद वही ज्ञानोदय काल वाला विरोधाभास है। कैसे एक ही समय में इतने ऊंचे आदर्श और इतनी गहरी असमानता, इतना भयंकर अन्याय साथ साथ चल सकते हैं? ये समझना बहुत मुश्किल है।
और मेरे लिए, सच कहूं तो, वो संस्थागत नस्लवाद का विचार सबसे अहम रहा। ये समझना कि बिना किसी के बुरे इरादे के भी पूरी की पूरी व्यवस्था कैसे भेदभाव कर सकती है, ये नस्लवाद की पूरी समझ को ही बदल देता है। ये फिर सिर्फ उन बुरे लोगों की बात नहीं रह जाती, ये हम सबकी व्यवस्था की, हमारे सिस्टम की बात बन जाती है।
बिल्कुल सही कहा। और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ सकते हैं कि नस्लवाद को सिर्फ अच्छे बनाम बुरे लोगों की लड़ाई समझना शायद नाकाफी है। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये शक्ति, इतिहास और विचारधारा की एक बेहद गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था है जिसने हमारी आज की दुनिया को गढ़ा है।
और इसे समझने और इसे चुनौती देने के लिए सिर्फ नेक इरादे या नैतिक गुस्से से शायद काम नहीं चलेगा। हमें एक पैनी, एक ऐतिहासिक रूप से सूचित समझ विकसित करनी होगी कि हम असल में किसके खिलाफ खड़े हैं, हम लड़ किससे रहे हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।